स्वागत है आपका दिनभर में। आज है 24 सितंबर दिन रविवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। बीएचयू में 3 दिन से चल रहा छात्राओं का धरना खत्म, लेकिन विश्वविद्यालय परिसर में तनाव बरकरार। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के भाषण के जवाब में पाकिस्तान की तरफ से मलिहा लोधी ने भारत पर लगाए गंभीर आरोप। संग संग गुनगुनाओगे में आज यतीन्द्र मिश्र से सुनिए संगीतकार रविंद्र जैन की संगीत यात्रा।
जब तक पूरे ना हो तेरे साथ तब तक दुल्हीन नहीं दुल्हा।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छेड़खानी के विरोध में विश्वविद्यालय परिसर के आगे धरना दे रही छात्राओं पर बल प्रयोग कर उन्हें प्रदर्शन स्थल से हटा दिया गया है। इस घटना के बाद छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय परिसर के हॉस्टल खाली करके अपने घर जा रहे हैं। नई संसद चुनने के लिए जर्मनी में आज मतदान जारी है। जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार जर्मनी की चांसलर एंगेला मार्केल की सेंटर राइट क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक और उनकी सहयोगी पार्टियां लोगों की पहली पसंद हैं। मार्केल के सामने बड़ी चुनौती सेंटर लेफ्ट पार्टी सोशल डेमोक्रेट्स है। वहीं कुछ छोटी पार्टियों को भी संसद के निचले सदन में पहुंचने की उम्मीद है।
So, meine Stimme ist abgegeben und ich freue mich darüber, dass jedenfalls in diesem Wahllokal die Wahl
wird. मैंने अपना वोट दिया है और मुझे खुशी है कि इस मतदान केंद्र में अधिक मतदान हुआ है। मैं इस मौके को चुनाव आयुक्तों को शुक्रिया देने के लिए इस्तेमाल करना चाहूंगा। साथ ही मैं उन 6000 इलेक्शन वॉलंटियर को शुक्रिया कहूंगा जिन्होंने स्वतंत्र, गुप्त और निष्पक्ष चुनाव में मदद की। ये थे जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर श्टाइनमायर के शब्द। बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने बताया है कि म्यांमार से भागकर बांग्लादेश आने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या में गिरावट आई है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के एक प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि ऐसा नहीं है कि शरणार्थियों का आना बंद हो चुका है, लेकिन बीते 2 दिनों में इस संख्या में गिरावट आई है। पिछले 1 महीने में 4,30,000 रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में दाखिल हो चुके हैं। बीबीसी समाचार। इराकी कुर्दिस्तान में सोमवार को स्वतंत्रता के लिए होने वाले जनमत संग्रह के मद्देनजर ईरान और तुर्की ने इराकी कुर्दिस्तान की सीमा के नज़दीक सैन्य अभ्यास बढ़ा दिया है। दोनों देशों ने इस जनमत संग्रह को लेकर कड़ा विरोध जताया है। मैक्सिको में आए भयंकर भूकंप के बाद जारी बचाव कार्यों में कई छोटे भूकंप आने के कारण बाधा आई है। राष्ट्रीय भूकंपीय सेवा के निदेशक जायोली पेरेज कॉम्पस ने कहा है कि ऐसे भूकंप आना सामान्य है, लेकिन इनकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। सात सितंबर को हमारे यहाँ 8.2 तीव्रता का भूकंप आया था और उसके बाद 4,300 हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हल्के भूकंप फिर आ सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उनकी तीव्रता कितनी होगी। ये थे जायोली पेरेस कॉम्पस के शब्द। केनिया के मुख्य अभियोजक ने पिछले महीने रद्द हुए चुनावों में संभावित धांधलियों के मद्देनजर चुनाव आयोग में जाँच के आदेश दिए हैं। केरियको टोबिको ने पुलिस और एंटी करप्शन एजेंसी से 21 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने विपक्ष के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए हैं। रवांडा में विपक्ष की नेता डायन रिगेरा, उनकी मां और बहन को राजधानी किगाली में दोबारा गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा है कि धोखाधड़ी और कर चोरी के आरोपों के अलावा तीनों पर राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डालने और जांच में रुकावट पैदा करने के आरोप हैं। समाचार।
आप सुन रहे हैं दिनभर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। बीएचयू में पिछले 3 दिन से चल रहा छात्राओं का धरना आज पुलिस और प्रशासन ने खत्म करा दिया, लेकिन उसके बाद विश्वविद्यालय परिसर में तनाव साफ देखा जा सकता है। पूरा परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है और छात्र हॉस्टलों को खाली करके अपने घरों को जा रहे हैं। शनिवार देर रात पुलिस ने धरने पर बैठी छात्राओं को जबरन हटा दिया। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया तो गुस्साए छात्रों ने कई जगह आगजनी की। छात्राओं के प्रदर्शन की शुरुआत पिछले दिनों एक छात्रा के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की घटना से हुई थी। उनकी मांग है कि प्रशासन छात्राओं की सुरक्षा के उचित प्रबंध कराए ताकि वो बेखौफ होकर कहीं भी आ जा सकें। राज्य सरकार ने हिंसा की जांच के आदेश दिए हैं। सुनिए समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शनिवार देर रात से शुरू हुआ ये माहौल रविवार को लगभग दिन भर कायम रहा। धरना दे रही छात्राओं को प्रशासन ने जबरन हटा दिया तो उसके बाद नंबर था छात्रावासों का। छात्रावासों की तलाशी ली गई और फिर पुलिस के ऊपर ऐसे तमाम आरोप लगे जो ऐसी घटनाओं के वक्त लगते हैं। पुलिस की मार खाई छात्राएं अपने शरीर के जख्म को दिखाते हुए आप बीती सुनाने लगी। बताया जा रहा है कि रात में अचानक धरने पर बैठी छात्राओं को वहां से बलपूर्वक हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई और छात्र छात्राओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। विश्वविद्यालय प्रशासन इस बात से इनकार कर रहा है, लेकिन एक प्रत्यक्षदर्शी छात्र ने घटना को कुछ इस तरह बयां किया।
हम लोग वीसी हाउस के सामने प्रदर्शन कर रहे थे कि वीसी साहब से हम मांग कर रहे थे कि वो बाहर आए, हमारी बातें सुने, हमारी मांग पूरी करें, लेकिन वो बाहर नहीं है। लेकिन उन्होंने अचानक से लाठी चार्ज करवा दिया। उनके कहने पे हुआ कि बिना कहने पे हुआ, ऐसा तो होता नहीं है कि बिना उनके कहने पे हो, उनके कहने पे होगा।
वहीं वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जेके भारद्वाज इस बारे में कुछ यूं राय रखते हैं।
बीएचयू के सुरक्षाकर्मी, जो कि पुलिस कर्मी नहीं होते, बीएचयू के सुरक्षाकर्मी होते, उनके साथ में झड़प हुई और झड़प होने के उपरांत ही सिचुएशन बिगड़ी। बिगड़ने के बाद में पुलिस और प्रशासन ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर पहुँचे और आवश्यक बल का प्रयोग किया। पीएचयू के जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी भी जो यूनिफॉर्म है वही खाकी कलर की है, जो कि पुलिस की वर्दी की होती है।
इस बीच विश्वविद्यालय परिसर में दिन भर अफरा तफरी मची रही। छात्राएं चुपचाप हॉस्टल खाली करके अपना सामान लेकर परिसर के बाहर जाते हुए दिखीं, तो छात्रों को अभी भी उम्मीद थी कि वो नारेबाजी और जुलूस जैसे लोकतांत्रिक तरीकों से हॉस्टल में रहने में कामयाब हो जाएंगे। ऐसी खबर आई कि सभी छात्रों से रविवार शाम तक हॉस्टल छोड़ देने को कहा गया है, लेकिन बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी ने इसे कोरी अफवाह बताया।
अब आप देखें कि कैसे गलत चीजों का प्रचार किया जाता है। ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है कि छात्रावास सब लड़के खाली करें। चूंकि ये दशहरा अवकाश हुआ है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर ऐसे में छात्र छात्रावास से अपने घर जाते हैं। ये लंबी छुट्टी है, मुझे वो आदेश देख के हैरानी होगी अगर है कहीं वो आदेश, पर मुझे नहीं लगता कि विश्वविद्यालय प्रशासन का ऐसा कोई निर्णय है कि छात्रावास खाली कराया जाए।
बहरहाल बीएचयू परिसर में हर जगह पुलिस और पीएसी के जवान और उनकी गाड़ियां दिख रही हैं। फिलहाल दशहरे की छुट्टी हो गई है और छात्र अपने घरों को रवाना हो रहे हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि ये समझना भूल हो सकती है कि आग बुझा ली गई है, बल्कि उसे सिर्फ दबाया गया है, दोबारा कभी भी सुलग सकती है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी वाराणसी।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने भाषण में पाकिस्तान पर कई गंभीर आरोप लगाए। सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत ने अपनी आज़ादी के 70 सालों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया में नाम कमाया है, जबकि पाकिस्तान की चर्चा दुनिया भर में चरमपंथ को बढ़ावा देने वाले देश के रूप में होती है। सुषमा स्वराज के भाषण का जवाब पाकिस्तान की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि मलिहा लोधी ने दिया। उन्होंने भारत पर चरमपंथ को बढ़ावा देने और जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार का हनन करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। पूरा ब्यौरा सुनिए विकास त्रिवेदी से।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 72वें अधिवेशन में भारत और पाकिस्तान के बीच कड़वाहट थमती नजर नहीं आ रही है। कश्मीर और चरमपंथ को लेकर दोनों देशों के बीच तल्ख जुबानी जंग हुई। इसकी शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी ने 2 दिन पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत और पाकिस्तान के अंदर चरमपंथी ताकतों की मदद करने का आरोप लगाया। भारत की तरफ से यूएन में अधिकारी इनम गंभीर ने पाकिस्तानी पीएम के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पाकिस्तान को टेररिस्तान कहा जाना चाहिए। लेकिन सारी निगाहें भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर टिकी हुई थी। सुषमा स्वराज जब संयुक्त राष्ट्र के मंच पर शनिवार शाम पहुंची तो उन्होंने पाकिस्तान पर चरमपंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। सुषमा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ संबंधों में अमन की पहल की, लेकिन पाकिस्तान को शांति रास नहीं आती। सुषमा के इस भाषण के बाद अब जवाब की बारी पाकिस्तान की थी। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि मलिहा लोधी ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत चरमपंथ को बढ़ावा देता है और कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है।
India's foreign minister deliberately ignored the core issue of Jammu and Kashmir. So let me be clear.
भारत की विदेश मंत्री ने जम्मू और कश्मीर के मुद्दे को नजरअंदाज किया है। मैं साफ कर दूं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे विवादित क्षेत्र माना है। मैं आप सभी और सुषमा स्वराज को आमंत्रित करती हूं कि संयुक्त राष्ट्र के नक्शे को देखें। इस राज्य पर भारत का सैन्य कब्जा अवैध है। ये थे मलिहा लोधी के शब्द। दो दिन पहले पाकिस्तानी पीएम अब्बासी ने दोनों देशों के बीच शांति और दोस्ती को स्थापित करने के लिए जिन्ना की जिस बात का जिक्र किया था उसका जिक्र कल सुषमा स्वराज ने भी किया था। मलिहा लोधी इसका जवाब देते हुए कहती हैं,
The Indian foreign minister sought to denigrate my country's founding father.
भारत की विदेश मंत्री ने जानबूझकर मेरे देश के संस्थापक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को चुना। मैं भारत की मौजूदा राजनीतिक शख्सियतों की बात करूं तो एक ऐसे राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं जिनके हाथ गुजरात के हजारों मुस्लिमों के खून से रंगे हुए हैं। मलिहा लोधी के शब्द। सुषमा स्वराज के भाषण का जवाब देते हुए मलिहा लोधी ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन आखिर में यह भी कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ समग्र बातचीत करना चाहता है जिसमें जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी शामिल है। हालांकि अपने भाषण के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में कथित पैलेट गन से जख्मी एक छात्रा की तस्वीर दिखाई थी, उसे लेकर विवाद पैदा हो गया है और कुछ जानकारों का आरोप है कि ये तस्वीर कश्मीर की ना होकर गजा पट्टी की है।
जानकारी दे रहे थे विकास त्रिवेदी। थोड़ी देर पहले मैंने इसी बारे में बात की वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर से और सबसे पहले पूछा कि दोनों देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरह के आरोप लगाए हैं वो किस तरह की कूटनीति है और इससे क्या हासिल होगा।
पहली बार तो नहीं हो रहा है, हर साल यूनाइटेड नेशंस से संयुक्त राष्ट्र पे जब जनरल असेंबली की बारी होती है तो हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इस तरह का आरोप प्रत्यारोप चलता है। हर साल पे ये निर्भर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध कैसे हैं। इस साल मैं जरूर कहूंगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध बिल्कुल है ही नहीं। आई थिंक इसमें बस जो नई चीज है कि पाकिस्तान ने इस बार अपने अम्बेसडर के लेवल पे उनके जो यूएन में ऑनबॉय हैं उनको भेजा है फॉरेन मिनिस्टर के स्पीच पे रिप्लाई करने के लिए, और इससे जाहिर है कि पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश लगा रहा है एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव के लिए संयुक्त राष्ट्र पे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्होंने अपनी प्लानिंग की है उसमें जो फेक उन्होंने तस्वीर दिखाई है उससे शायद ये लगता है कि पाकिस्तान ने पूरी अपनी तैयारी नहीं की थी और महज रिप्लाई करने के मकसद से इन्होंने एक प्रोपेगेंडा की तरह इन्होंने अपना स्पीच बनवाया था।
आखिर में मलिहा लोधी ने कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की बात की, आपको लगता है कि जिस तरह के रिश्ते दोनों देशों के बीच में है उसमें कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की कोई संभावना आने वाले समय में बनती नजर आती है?
कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की जो बात है वो 2015 से है जब सुषमा स्वराज जी पाकिस्तान गई थी और इस्लामाबाद में ये ऐलान हुआ था कि भारत और पाकिस्तान अपने संबंध को फिर से शुरू करना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव। लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं है जहां हम देख सकते हैं कि कोई बातचीत की प्रक्रिया अभी बन रही है, खासतौर से इस वजह से कि अब पाकिस्तान में एक नए प्रधानमंत्री हैं लेकिन शायद एक साल के लिए ही होंगे क्योंकि अगले साल पाकिस्तान में इलेक्शंस हैं और उसके बाद फिर इंडिया में इलेक्शंस होंगे 2019 में। तो अभी ऐसा नहीं लगता है कि कोई पॉलिटिकल प्रोसेस की ज्यादा उम्मीद रखी जा रही है।
ये थी वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर जो कह रही थी कि आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच समग्र बातचीत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। चर्चा खेलों की कर लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर में तीसरा वनडे खेला जा रहा है। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे चल रही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत के सामने जीत के लिए 294 रन का लक्ष्य रखा है। मैच का हाल बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आदेश कुमार गुप्त। जी आदेश, क्या चल रहा है इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में?
जी अमरीश, जैसा कि आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने 294 रनों जैसा मजबूत लक्ष्य भारत के सामने रखा है, लेकिन तीसरे मुकाबले में भी भारत बहुत ही मजबूत स्थिति में है, क्योंकि थोड़ी देर पहले भारत का स्कोर 27वें ओवर में 2 विकेट खोकर 172 रन है। कप्तान विराट कोहली हैं और पिच पर उनका साथ दे रहे हैं हार्दिक पांड्या। इससे पहले अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा के बीच पहले विकेट के लिए 139 रनों की शतकीय साझेदारी हुई। अजिंक्य रहाणे ने पैट कमिंस की गेंद पर LBW होने से पहले 70 रन बनाए, जिसमें उनके 9 चौके शामिल थे। रोहित शर्मा ने भी बेहद शानदार बल्लेबाजी करते हुए 71 रन बनाए। वो कल्टर नाइल का शिकार बने, उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के लगाए। हालांकि इससे पहले अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला उनका तब बहुत हद तक सही नजर आ रहा था जब 37.5 ओवर तक उन्होंने केवल 2 विकेट खोकर 224 रन बना लिए थे। दरअसल इस बीच 154 रनों की साझेदारी आरोन फिच और कप्तान स्टीव स्मिथ के बीच हुई थी और ऐसा लगता था कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा स्कोर यहाँ पर बनाएगा, यानी 300 से भी ज़्यादा। लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी की और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो डेविड वार्नर ने 42 रन बनाए, आरोन फिंच ने 124 रनों की शतकीय पारी खेली। वो इस सीरीज़ का पहला मैच खेल रहे थे, पहले 2 मैचों में वो अस्वस्थ होने के कारण नहीं खेल सके थे, और कप्तान स्टीव स्मिथ ने भी 63 रन बनाए। मार्कस स्टोइनिस ने 27 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके। जैसे ग्लेन मैक्सवेल ने 5 रन बनाए, ट्रेविस हेड ने 4 रन बनाए, पीटर हैंडकॉम्स ने केवल 3 रन बनाए। भारत के कुलदीप यादव ने 75 रन देकर 2 और उनके अलावा जसप्रीत बुमराह ने भी 52 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। और एक और खेल समाचार आपको बता दें कि ब्रिस्टल में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के सामने आज जीत के लिए 370 रनों का लक्ष्य रखा है, यानी काफ़ी मुश्किल लक्ष्य। मोइन अली ने 102 रनों की शतकीय पारी खेली।
बहुत बहुत शुक्रिया खेल समाचारों के लिए आदेश कुमार गुप्त।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम, BBC हिंदी।
रविंद्र जैन भारतीय फिल्म संगीत से जुड़ा ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। जिसने भी टेलीविजन पर मशहूर रामायण धारावाहिक देखा हो या फिर नदिया के पार जैसी अत्यधिक सफल रही फिल्म देखी हो, वो रविंद्र जैन की आवाज़ और उनके अलग अंदाज वाले संगीत से जरूर परिचित होगा। आज संग संग गुनगुनाओगे की हमारी साप्ताहिक पेशकश में संगीत समीक्षक यतीन्द्र मिश्र रविंद्र जैन की संगीत प्रतिभा और उनकी कला की बारीकियों को याद कर रहे हैं।
संग संग गुनगुनाओगे, कला समीक्षक यतीन्द्र मिश्र के साथ।
आज हम जिस संगीतकार की बात करने जा रहे हैं, उनकी पूरी देन एक ऐसे प्रबुद्ध कलाकार के योगदान की तरह रेखांकित की जा सकती है, जिन्होंने संगीत निर्देशन के साथ साथ गीत और कविता लिखने का भी बहुत ही सफल और सार्थक काम किया। वे उन चंद बिरले संगीतकारों में रहे हैं जिन्हें कविता, शायरी और गीत की समझ को आत्मसात करते हुए कुछ गंभीर ढंग का लीक से हटा हुआ काम किया है। रविंद्र जैन इसी मायने में अलग राह के एक समावेशी संगीतकार के रूप में देखे जा सकते हैं, जिन्होंने ग्रामीण और शहरी जीवन के मनोभावों को फिल्मी धुनों के लिए रचकर अमर बनाया। रविंद्र जैन बचपन से ही अपनी कमजोर आंखों के चलते साहित्य और कविता को दूसरों के मुख से सुनकर बड़े होते रहे। इस लिहाज से उनके भीतर एक बिल्कुल अलग किस्म की दुनिया बनी, जिसने उनके मानस को उर्वर करते हुए वाचिक परंपरा का राही बनाया। जो कुछ भी सुनते थे उन्हें याद रह जाता था और उन्होंने अपने संगीत की नोटबुक और कॉपियों को भी मानसिक रूप से अपने स्मरण में संजोया, अभ्यास के लिए सहज बनाया। यही वो अलग रहा है जो रविंद्र जैन के संगीत चितेरे को कल्पनाशील बनाते हुए एक बिल्कुल जुदा किस्म का संगीतकार बनाती है। एक गीत में उनकी इसी उर्वरा और स्मरण की मेधा को देशज अभिव्यक्ति की तरह देखा जा सकता है।
संकेत मिलन का भूल न जाना मेरा प्यार ना बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना।
रविंद्र जैन ने बचपन में संगीत की बारीकियां पंडित घमंडीलाल, पंडित जनार्दन शर्मा और पंडित नाथुराम शर्मा से सीखी थी और बाकायदा प्रयाग संगीत समिति से शास्त्रीय संगीत की दीक्षा भी ली थी। एक हारमोनियम वादक के रूप में भी उन्हें महारत हासिल रही और बंगाल के लोक संगीत के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने रविंद्र संगीत के स्थापत्य को भी अपनी सांगीतिक यात्रा में विशेष दर्जा दिया। इस आहट और बंगाल के उस सुर प्रभाव को इस तरह सुना जा सकता है। बंगाल के इस जादू का विस्तार उनकी उन व्यावसायिक धुनों में भी दिखाई देता है जो लोकप्रियता के आंगन में भी स्वीकृत हुई और आज रविंद्र जैन के सर्वश्रेष्ठ गीतों की नुमाइंदगी के तौर पर देखी और सुनी जाती हैं। रविंद्र जैन ने कम फिल्मों में संगीत दिया है, उनमें भी अधिकतर फिल्में घरेलू या ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर राजश्री प्रोडक्शन की फिल्में रही हैं। फिर भी खुद की प्रतिभा और संगीत के प्रति विविधता टटोलने वाली उनकी दृष्टि ने इन फिल्मों में भी नए तौर पर संगीत के लिए हरारत और रंगत भरी है। यदि हम किसी रूपक या प्रतीक के तौर पर कहें तो रविंद्र जैन का संगीत लोक व्याप्ति में उस पुकार को संकेतित है जो गांव की सीवान पर अपनी कूक को ज्यादा बड़े अर्थों में चरितार्थ करता है। फिर वो गीत गाता चल के संगीत का मामला हो या कि चित्तौर का बिल्कुल ही ठेठ पारंपरिक स्वर जिसमें येसुदास की पुकार में गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा सुनना सहज लगता है और अखियों के झरोके से कि वो कर्णप्रिय धुन जो आज भी एकदम नई सी लगती है।
अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए।
गांव के माहौल से अलग शहरी परिवेश के लिए रचा गया उनका संगीत भी उतना ही दिलचस्प है। उन्होंने अधिकांश फिल्मों के संगीत द्वारा वो कुलीनता भी हासिल की जो एक साथ दो विपरीत छोरों पर साधना किसी भी संगीतज्ञ के लिए मुश्किल भरा काम होता है। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में इस तरह के प्रयास को सुनना विशेष महत्व का है।
कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं।
एक तरफ इतने प्रतिष्ठित पार्श्व गायक गायिकाओं के लिए गीत रचने में रविंद्र जैन सिद्धहस्त थे, तो दूसरी तरफ उन्होंने आरती मुखर्जी, हेमलता, जसपाल सिंह और येसुदास के लिए उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ धुनें पैदा की, जो आज भी फिल्म संगीत के इतिहास का सुनहरा अध्याय रचती हैं। कुछ उदाहरण से इस तथ्य को हम समझ सकते हैं। एक संगीतकार के रूप में उन्होंने भोजपुरी और ब्रजभाषा के लिए बनी फिल्मों में अपना सर्वोत्तम दिया है, जिसमें नदिया के पार और ब्रजभूमि जैसी फिल्मों की अलग से चर्चा की जानी चाहिए। नदिया के पार का ब्याह गीत तो जैसे आज भारत के पारंपरिक विवाह का प्रतीक गीत बन चुका है, जो हर शादी की अनिवार्य उपस्थिति के रूप में कहीं भी किसी भी शहर में सुना जा सकता है।
जब तक पूरी ना
लोकप्रियता के शिखर पर चढ़ते हुए रविंद्र जैन ने अपने संगीत निर्देशन की सबसे बड़ी सफलता, या हम इस तरह कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ काम, राज कपूर के लिए राम तेरी गंगा मैली में किया था। ये फिल्म उनके कैरियर में वही मुकाम रखती है जो खयाम के लिए उमराव जान और शिवहरी के लिए सिलसिला का रहा है। कर्णप्रियता की अत्यंत मनोहारी और ताजगी भरी अदायगी के लिए रविंद्र जैन ने राग किरवानी, पहाड़ी, अहिर भैरव आदि रागों का सराहनीय ढंग से इस्तेमाल करते हुए राम तेरी गंगा मैली का संगीत बनाया था, जो आज भी सराहा जाता है। साथ ही लता जी और सुरेश वाडकर की आवाजों के माधुर्य के लिए भी अलग से राम तेरी गंगा मैली का रिकॉर्ड आज भी सुना जाता है। एक गीत इसी बात की नुमाइंदगी के लिए सुनना चाहिए।
ओ गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते।
आपसे विदा लेते हुए रविंद्र जैन की वो सबसे शाहकार धुन सुननी चाहिए, जिसके लिए कहा जाता है कि राज कपूर की आत्मा इसी गीत में बसती थी। यही वो गीत है जिस गीत में दर्द और रोमान का बड़ा उदात्त पक्ष गायकी और संगीत के चलते छलक आया है, और रविंद्र जैन की आत्मा भी इसकी धुन में उतर गई है।
ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखिएगा। और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छेड़खानी के विरोध में विश्वविद्यालय परिसर के आगे धरना दे रही छात्राओं पर बल प्रयोग कर उन्हें प्रदर्शन से हटा दिया गया है। नई संसद चुनने के लिए जर्मनी में आज मतदान जारी है। जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार जर्मनी की चांसलर एंगेला मार्केल की सेंटर राइट क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक और उनकी सहयोगी पार्टियां लोगों की पहली पसंद हैं। बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने बताया है कि म्यांमार से भागकर बांग्लादेश आने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या में गिरावट आई है। पिछले एक महीने में 430,000 रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में दाखिल हो चुके हैं। इराकी कुर्दिस्तान में सोमवार को स्वतंत्रता के लिए होने वाले जनमत संग्रह के मद्देनज़र ईरान और तुर्की ने इराकी कुर्दिस्तान की सीमा के नज़दीक सैन्य अभ्यास को बढ़ा दिया है। मैक्सिको में आए भयंकर भूकंप के बाद जारी बचाव कार्यों में कई छोटे भूकंप आने के कारण बाधा आई है। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ दिनभर की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संभाला देवाशीष कुमार ने और इसे फेसबुक पर आप तक पहुंचाया विकास त्रिवेदी ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।